नंबर चार। अभी हम आए हैं पृष्ठ संख्या 12 पर। देखो ये पहले लाइन से हम शुरू करते, जरा 11 पृष्ठ पर देख लेना।
आप शुरू करने के पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ।
हाँ, जरूर जरूर बताना,
खास अनीता के लिए। यहाँ जो हम बोलते हैं, आप निकालना मंगलाचरण, अज्ञान तिमिर अंधानाम,
पहले पेज पर
ये बोला है आपने पहले दिन। अज्ञान रूपी जो तिमिर यानी अंधकार, उससे जो अंधे बने हैं, ज्ञानांजन शलाकया, यानी अंजन जो आंखों में डालते तो अच्छा दिखता है, तो ज्ञान रूपी अंजन हमारे आंखों में डाला, इसलिए ये अज्ञान रूपी अंधकार खत्म हो जाएगा। चक्षुर उन्मीलितम येन, ऐसे जो हमारे आंखें खोलने वाले हैं, ऐसे गुरुओं को, उन गुरुओं को हम नमस्कार करते हैं। अगले टाइम बोलोगे तो ये ध्यान रखना। चलो,
सार्थक ख्याल होगा तो बात सही ख्याल में आती है। 11 नंबर का प्रश्न निकालना। कल हमने पैराग्राफ पढ़ा था, फिर भी ये बहुत महत्व की बात है। देखो इस नीचे का पैराग्राफ, इस जगत के अंदर अनंत अनंत जीव है, अनंत अनंत पुद्गल है, धर्म एक है, अधर्म एक है, आकाश एक है, असंख्यात काल द्रव्य है, किंतु फिर भी प्रत्येक परमाणु सारे अनंतानंत परमाणुओं से भिन्न है। यानी एक एक द्रव्य अन्य अनंत द्रव्यों से भिन्न है। तो परमाणु परमाणु तो स्कंद होते हुए दिखाई देता है। एक स्कंद में कोई भी एक स्कंद ले लो, तो एक एक स्कंद में जो अनंत परमाणु है, 11 नंबर का पेज, एक एक परमाणु में, एक एक स्कंद में जो अनंत परमाणु है, उसका एक एक परमाणु अन्य से जुदा है, उसकी पूर्ण स्वतंत्रता है। यही कह रहे हैं, ये बात बता रहे हैं यहाँ पर। ये बात बता रहे हैं कि प्रत्येक परमाणु सारे अनंतानंत परमाणुओं से भिन्न है। नीचे का पैराग्राफ चल रहा है, सारे अनंतानंत परमाणु भी प्रत्येक परमाणु से भिन्न है। यानी एक द्रव्य अन्य रूप से नहीं है, उससे भिन्न है, जुदा है, उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव पूरा जुदा है। एक स्कंद की अपेक्षा भी प्रत्येक परमाणु अपने क्षेत्र में ही परिणमन करता है। भले स्कंद रूप से वो एक दिखाई दे रहा है, हमें एक चीज दिखाई दे रही है, पट्टी दिखाई दे रही है, उसमें से कितने अनंतानंत परमाणु हो गए उसमें, क्योंकि उसमें एक एक परमाणु अपने में परिणमन कर रहा है। हमें सबका एक जैसा परिणमन दिख रहा है, भले दिखे परंतु तो भी प्रत्येक परमाणु अपने में परिणमित हो रहा है, ये कहना चाहते हैं।
देखो हम देखते हैं, ये पेंसिल इतनी बड़ी थी, ये अनंत परमाणु का पेंसिल बनी, उसमें छोटी होती 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 अभी भी कुछ बाकी है, लेकिन इधर गए, छिलते छिलते हम इतने आए, तो प्रत्येक परमाणु का परिणमन उस रूप हो रहा है।
कोई भी एक परमाणु अनंत परमाणुओं से भिन्न है, सत की अपेक्षा। हाँ बिल्कुल,
देखो यहाँ बता रहे ये छह द्रव्य है, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, इन द्रव्यों की संख्या कितनी है, ये तो जाति अपेक्षा छह द्रव्य बताए, तो संख्या अपेक्षा कितने हैं, तो जीव अनंत है, पुद्गल अनंत अनंत है, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य एक एक है, और काल द्रव्य बेन असंख्यात, कितने असंख्यात है, लोक प्रमाण असंख्यात, लोक प्रमाण इसलिए कहा जाता है, असंख्यात के असंख्यात भेद है, तो उसमें जो बीच पर्टिकुलर असंख्यात जो लोकाकाश में जितने आकाश द्रव्य के प्रदेश हैं उतने प्रमाण में काल द्रव्य है, ये बिल्कुल याद रहना चाहिए। तब ये जो बता रहे हैं ना कि प्रत्येक परमाणु भी दूसरे अनंत परमाणु से भिन्न है और अनंत परमाणु एक परमाणु से भिन्न है, ये जो बोल रहे हैं तो किसका ये बताया जा रहा है कि यहाँ प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता है। कोई एक परमाणु, एक परमाणु इतना छोटा होता है जितना एक प्रदेश, एक प्रदेश इतना छोटा होता है कि जो निगोदिया जीव है वो निगोदिया जीव भी असंख्यात प्रदेशों को रोकता है। तो उसका शरीर अपने आंखों से दिखता है कि नहीं? निगोद जीव देखा कि नहीं आपने? कितना बड़ा होता है? अरे आंखों से नहीं दिखता है बेटा, फिर भी उसमें असंख्यात प्रदेश ही है। वो जीव कोई भी जीव हो गए वो तो असंख्यात प्रदेशों को रोकेंगे यानी व्यापेंगे। हम कैसे 2x2 फुट पे बैठे मान लो, वैसा वो जहाँ रहेंगे उधर असंख्यात प्रदेश आकाश के वो वहाँ व्यापते हैं, रोकते हैं, एक्यूपाई करते हैं। तो एक प्रदेश कितना छोटा होगा, और इतना एक प्रदेश छोटा है उतना ही पुद्गल परमाणु है, और एक पुद्गल परमाणु में अनंत गुण है। ये समझना पड़ेगा बेटा, हाँ, क्योंकि ये समझने, ये यहाँ जो बार बार बताए ना, देखो सेकंड लाइन में क्या लिखा, पर प्रत्येक परमाणु सारे अनंतानंत परमाणु से भिन्न है। ये सारे अनंतानंत कितने होते हैं उसका भी माप बहुत जबरदस्त है। सारे अनंतानंत परमाणु भी प्रत्येक परमाणु से भिन्न है, यानी एक एक सिंगल परमाणु परमाणु भी अलग अलग भिन्न भिन्न है। ये हमारे नाखून होता है, 15 दिन के बाद हम काट देते हैं, 10 दिन जो भी जीव, तो वो उतना उसका परिणाम निकल गया, यानी ये स्कंद से हट गए, बाकी है लेकिन इसका और इसका कोई संबंध नहीं, ये समझ लेना। अभी ऐसी बहुत सारी बातें आती है। आप बता रहे थे एक स्कंद की अपेक्षा परमाणु,
कोई भी एक परमाणु अनंत परमाणु से भिन्न है। सत की अपेक्षा, सत की अपेक्षा ने द्रव्य की अपेक्षा को हो या सत्ता की अपेक्षा को, प्रत्येक द्रव्य की अपनी अपनी सत्ता जुदी जुदी है, उसकी अपेक्षा। धर्म अधर्म आकाश काल भी जुदा जुदा है। स्कंध में परमाणुओं का परिणमन सामूहिक रूप से होता है, होता है ना, वो दिखाई देता है हमको, एक समान दिखाई दे रहा है, फिर भी प्रत्येक परमाणु अपने अपने क्षेत्र में ही परिणमन करता है। क्यों ऐसा? हम गुण किसको कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में सभी अवस्थाओं में, पर्याय किसको कहते हैं? वो भी अपने द्रव्य के संपूर्ण भाग में और एक समय के लिए। जितना बड़ा द्रव्य है उतना बड़ा गुण है, उतनी बड़ी पर्याय है, यानी पर्याय भी कहाँ व्यापी हुई है? पूरे द्रव्य में व्यापी है। तो उसका क्षेत्र कितना है? अपने द्रव्य पूर्णता है, अपने द्रव्य से बाहर उसका कोई क्षेत्र नहीं। इसलिए क्या कहा कि परमाणुओं का जो परिणमन है, प्रत्येक परमाणु अपने अपने क्षेत्र में ही परिणमन करता है। वो उसका क्षेत्र कितना है? तो एक प्रदेश है। तो एक एक परमाणु का जो परिणमन है उसके अपने एक सिंगल प्रदेश में हो जाता है, उतना ही उसका क्षेत्र है। इसी प्रकार प्रत्येक जीव अनंतानंत जीवों से जुदा है। यह प्राणी जो मोह माया में फंसकर रात दिन विचरता रहता है कि यह मेरा है, यह मेरे घर का है, यह सब व्यर्थ है, क्योंकि अपने स्वभाव से बाहर अपना क्या है, यानी हमारा भी जो परिणमन हो रहा है अपने ही क्षेत्र में हो रहा है, अपने क्षेत्र से बाहर कहीं नहीं हो रहा है। हम राग द्वेष भी कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, ज्ञान भी हो रहा है अपने क्षेत्र में हो रहा है। चैतन्य स्वभाव के अतिरिक्त ये वैभव, ये ठाट बाट सब व्यर्थ है, क्योंकि वो तो मेरे से जुदा है, वो अन्य द्रव्य है, उनका परिणमन अपने में हो रहा है। वो द्रव्य, ये बात सही है, पर वो मेरा है कहाँ से लाया? हमने उसके साथ संबंध जोड़ दिया। यहाँ तो कहते एक एक परमाणु जो हमारे वैभव रूप जो पुद्गल का स्कंद है, वो भी उसमें से एक एक परमाणु स्वतंत्र है, वो एक परमाणु दूसरे से कुछ नहीं लगता है। तो कहते वो मेरा हुआ, ये कहाँ से बात आई? ये हो ही नहीं सकती, ये कहना चाहते। आगे देखते देखो, यह प्राण ये हो गए ना, चैतन्य स्वभाव के अतिरिक्त ये विभो ये ठाड़ बाट सब व्यर्थ है। जिसने अपना स्वभाव समझ लिया,
स्पीकर चालू है, स्पीकर ऑन है क्या? है ऑन है। आपकी आवाज बहुत धीमी आती है।
अभी स्पीकर लगाया है क्योंकि उसकी आवाज, ये कुछ आवाजें आ रही थी, बंद किया।
ती म्हणते मी किती वेळा विचारते तुम्हाला आवाज कसा येत नाही माझा।
अच्छा हाँ, देखो अभी सुनो, 11 पेज पर ही बात चल रही है। चैतन्य स्वभाव के अतिरिक्त ये वैभव ये ठाड़ बाट सब व्यर्थ है। जिसने अपना स्वभाव समझ लिया उसके लिए ये सब बातें निस्सार लगती है, क्योंकि प्रत्येक सत्य जो है, प्रत्येक द्रव्य है, उसकी सत्ता, उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव पूरा जुदा जुदा है, तो अपने से बाहर अपना कुछ है ही नहीं। तो ये सारी निस्सारे ने मेरे लिए वो कुछ कार्यकारी नहीं। यहाँ तक अपनी बात कल हुई थी, यहाँ से अपना विषय शुरू होता है। 12 नंबर का पृष्ठ है, पहली लाइन, मेरी आत्मा सारे विश्व से भिन्न है, मैं एक हूँ, मैं सबसे न्यारा हूँ, इस प्रकार विचार करना चाहिए। यहाँ तो मैं अकेला है, मैं अकेला रह गया इसलिए कहते हो तो दुख का कारण बना लेता है, क्योंकि शरीर रूप मैं हूँ और मेरे जो संयोग थे, मेरे रिलेटिव कोई नहीं रहे, सब बिछुड़ गए, अरे अरे मैं अकेला रह गया। तो अकेला ये तो वस्तु व्यवस्था है, तो वो तो जो वस्तु व्यवस्था होती है वो सुख के कारण होनी चाहिए, उसमें दुख की कुछ बात ही नहीं आती। तो यह कहते मैं सबसे न्यारा हूँ, ये कहते ना एकत्व विभक्त आत्मा, समय सार की भी बात यही है, विभक्त है ने पर से जुदा। दुनिया में कितने तो मेरे कुछ मुझे छोड़कर अन्य अनंत जीव है, उन सबसे मैं जुदा जीव द्रव्य हूँ। बाकी तो अनंत पुद्गल है, धर्म धर्म आकाश, उस सबसे तो मैं जुदा ही जुदा हूँ, तो मैं इनसे विभक्त हूँ और अपने गुण पर्याय से अभिन्न हूँ, एकत्व हूँ और मैं एक हूँ। तो मैं एक हूँ ये बात यहाँ चल रही है, एकत्व विभक्त आत्मा की बात चल रही है कि मैं सबसे न्यारा हूँ और मैं एक हूँ। और ऐसा ज्ञान, ऐसे हमें जो स्वीकार होता है वो तो आनंद के देने वाला है, और हम ऐसे ही का अरे मैं बेचारा अकेला पड़ गया करके दुख मानते रहते हैं। मैं निजी दो बातों को छोड़कर किसी का कुछ नहीं करता, एक है योग और दूसरा है उपयोग। योग यानी आत्म प्रदेशों का कंपन हो रहा है, वो भी विभाव रूप चल रहा है परंतु है अभी, यानी परद्रव्यों में करने रूप इसकी जो कुछ प्रयत्न हो रहा है, परद्रव्य में कुछ नहीं करता, वो अपने में उछलता है, क्या करता है, योग होता है उसका, और उसके ज्ञान में उसको जानता रहता है बस, और कुछ नहीं करता है। यानी करने की प्रवृत्ति प्रयत्न रूप कुछ प्रयत्न करता है, इसके प्रयत्न से पर में कुछ नहीं होता, इसी में होता है, क्या होता है, योग होता है। और क्या है, ज्ञान में तो चलिए उपयोग उसका है, तो योग और उपयोग, यानी योग किस में लगा है उसके, अन्य चीजों के बारे में, अन्य चीजों में ये कुछ नहीं कर सकता है, उसके आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होता रहता है। जैसे हम राग द्वेष भी ना, पर में तो कुछ होता नहीं और ये हम बैठे बैठे हम ही कषाय कर लेते हैं। कषाय क्या है, परिणामों की चंचलता है, और योग क्या है, प्रदेशों की चंचलता है। तो ये जीव पर में कुछ करता ही नहीं है, ना देह में कुछ कर सकता है, वो करने धरने की उसकी तो प्रयत्न हो रहे अंदर, तो क्या प्रयत्न कर रहे, आत्म प्रदेशों का हलन चलन परिस्पंद, इसको कहते हैं योग, और उपयोग है नहीं उसके ज्ञान, तो कहते हैं योग और उपयोग। मैं कदाचित इन दोनों का ही करता हूँ, कदाचित क्यों कहा, ये अज्ञान दशा में उसका कर्ता बन के बैठा है ना, तो कदाचित कहा, किसी अपेक्षा अन्य कुछ नहीं करता हूं। मेरी आत्मा के प्रदेशों में जो हलन चलन होती है उसी का नाम योग है, और जो गुणों का प्रयोग है, प्रवर्तना है, उसका नाम उपयोग है।
यहाँ गुणों का प्रवर्तन को
ऐसी आवाज आ रही जोर जोर से,
यहाँ गुणों के प्रवर्तनों को उपयोग कहा, ये तो हम ज्ञान गुण के प्रवर्तन का उपयोग कहेंगे।
हाँ।
हेलो हेलो शोभा, अगर खूप आवाज येतो तुमच्याकडनं,
खर आवाज येतो,
काय आपलं हे चालल्यासारखं खुर्र असं खूप जोरात येतं, म्हणजे आपण मिक्सर चालवतो ना तसं। हा बघ चालू आहे बघ, हां आता बंद। हॅलो 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 चालू आहे, चालू आहे आता। चल असेल आता नीट जे असेल ते बघ,
इसमें रेकॉर्ड हो रहा है।
क्या करू अभी, बहन को देखो क्या उसको देखो।
हाँ देखो अभी सुनो, हमने क्या देखा, अपना क्या लगा है योग और उपयोग। योग किसको कहा, ये जो आत्म प्रदेशों में जो हलन चलन होते हैं उसका नाम है योग है, और जो गुणों का प्रयोग है प्रवर्तना है उसका नाम उपयोग। अभी यहाँ क्या कहना चाहते हैं उसको पढ़ेंगे हम, प्रवर्तन है उसका जो हम ज्ञान की बात करेंगे, जानने का कार्य हो रहा है वो उपयोग है।
नहीं मुझे ऐसा पूछना था कि यहाँ गुणों के प्रयोग है उसको उपयोग कहा, हमने तो उपयोग तो ज्ञान और दर्शन दोनों में देखा,
यहाँ तो शुद्ध अशुद्ध उपयोग की बात चल रही है। आगे जरा पढ़ेंगे उनको हाँ, क्या कहना है वो देखेंगे। हाँ। इन दोनों के अतिरिक्त मैं कर ही क्या सकता हूँ, सिद्ध भगवान शुद्ध उपयोग के करता है, शेष जीव यथा योग्य शुभ अशुभ व शुद्ध उपयोग के करता है। ये जगत के जितने परिणमन होते हैं सब एक दूसरे के यथा योग्य निमित्त करके सतत होते रहते हैं। यथा योग्य निमित्त सहज वहां, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपने में परिणमन कर रहा है तो किसी का परिणाम किसी अन्य में सहज रूप से निमित्त रूप हो जाता है। निमित्त उसका कार्य करता ही नहीं है, निमित्त उसमें कुछ नहीं कर रहा है उसके। यहाँ क्या लिखा देखो, जगत के जितने परिणमन होते, कितने होते हैं, हर द्रव्य के अपने में परिणमन चल रहा है, तो जितने होते हैं अनंत अनंत द्रव्यों के प्रत्येक समय में होते हैं, यानी सब जो परिणमन है सब एक दूसरे को यथा योग्य निमित्त करके सतत होते रहते हैं। होते तो अपने निजी शक्ति से उपादान से होते हैं, परंतु ये निमित्त सहज रूप से वहां उपस्थित रहते हैं, बस इतनी बात है। आत्मा तो दूसरे कार्यों की चेष्टा का स्वयं ही अकर्ता है, चेष्टा यानी प्रयत्न, यानी परद्रव्यों के कार्यों में तो वो तो अकर्ता ही है, वो कर ही नहीं सकता, ना ज्ञानी करता है ना अज्ञानी करता है, ये मान लिया है उसने, उसने माना है, परंतु उसने मान लिया तो वो जगत का कर्ता हो कैसा हो गया, ये उसकी भ्रमणा है। जैसे रोटी बनाई, अब बताओ आत्मा ने इसमें क्या कार्य किया, आग जलाई या आटा गूंथा, क्या किया? अरे भैया वह अपनी जगह ही स्थिर है। कौन? आत्मा अपनी जगह है। आत्मा के प्रदेशों के योग के निमित्त से शरीर में वायु का संचार हुआ। देखो ये बात आत्म भावना में भी आई थी, समाधि तंत्र में वायु का संचार हुआ। जिससे अंगों में हलन चलन हुआ और उस प्रसंग में उपस्थित कोई चीज रोटी बना गई। वहां उपस्थित कोई चीज रोटी बना गई,
यानी यहाँ जो हवा जो निकलती है उससे पुद्गल में ही परिणमन होगा, शरीर में बताया ना।
हाँ, निमित्त से शरीर में वायु का संचार होता है, वो उसमें होते निमित्त से बताया, वो पुद्गल है जो ये अरूपी है वो रूपी को क्या हिलाए जलाए, परंतु वह सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है तो उसको कहने में आता है, और हमें लगता है हमने ही सारा कार्य किया। उसमें तो स्पष्ट शब्द में समाधि तंत्र में लिखा था, जीव का और शरीर का डायरेक्ट निमित्त नहीं है, जीव के उसके जो प्रयत्न हुए वहां शरीर में वायु का संचार हुआ और उसके कारण
प्रदेशों के हलन चलन के कारण,
आत्म प्रदेशों के हलन चलन, लेकिन आत्मा के प्रदेशों के योग के निमित्त से शरीर में वायु का संचार हुआ जिससे अंगों में हलन चलन हुआ और उस प्रसंग में उपस्थित कोई चीज रोटी बना गई। यानी ये तो रोटी का परिणाम जो हुआ है वो आटे में से रोटी बन गई, वहाँ जो कोई शरीर की क्रिया हुई जो कुछ आ, परंतु ये सारे निमित्त रूप से है। रोटी रूप कौन परिणामित हुआ हमें सच्चा कारण ढूंढना है तो ये सोचना वो पर्याय है, उस पर्याय रूप से कौन परिणामित हुआ, शरीर हुआ कि आत्मा हुआ कि बेलन हुआ, क्या हुआ कि तवा हुआ कि अग्नि हुई, आटा हुआ, तो आटा उसका करता है, तो बाकी चीज वो अपने अपने में रही है, अपने में रहकर वो आटा उस रूप परिणामित हुआ, आटा भी अपने में परिणामित हुआ है, और हमें लगता है कि हमने सारा कार्य किया। मिथ्या दृष्टि सम्य दृष्टि या सिद्ध कोई भी अपने आप में परिश्रमण करने के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं करता, यानी सभी जीव अपने अपने में ही परिणमन कर रहे हैं। परिश्रम ने हमें लगता है कोई कष्ट करना है, कष्ट उठाना है, कोई बोझा ढोना है तो परिश्रम किए, वो बात नहीं यहाँ पर, अपने में ही परिणमन करता है। भले सिद्ध भगवान भी अपने में ही परिणमन कर रहे हैं, हम नहीं, नहीं हम तो दूसरों का करते हैं, वो कुछ किसी का कुछ नहीं करते, पर हम पूरे दुनिया का करते हैं, ऐसे मान रखा है कि नहीं रखा है। बाकी अन्य पदार्थों में कर्तव्य समझना ये सब मोह माया का जाल है, मिथ्यात्व। कर्तव्य ने अपना एक कार्य मैं कर सकता हूँ, ये मेरा करने जैसा है, या मैं करने वाला हूँ या कर सकता हूँ,
नहीं करना चाहिए ना,
हाँ
ये भी है ना
कर्तव्य, वो हमने हमारा क्या कर्तव्य है समाज के प्रति हमारा तो कर्तव्य ने करने जैसा
समाज के
बच्चे है तो हमारा कर्तव्य है कि नहीं बच्चों को बड़ा करना, अमेरिका से आए तो उसके हिफाजत से बराबर रोटी बिटी खिलाना, क्योंकि वहाँ नहीं खा सकते ना, इसलिए यहाँ खिला के भेजना
है, साथ में देना।
अरे आपसे अच्छा तो वहाँ बना के खाते हैं, अब चिंता मत करो, वहाँ वहाँ जाने वाले भी अच्छे, खाने से कोई रुकता नहीं है, है ना।
और अमेरिका में इंडिया से खाना सस्ता मिलता है होटल में
जैसे स्वप्न में हम देखते हैं कि मैं जंगल में जा रहा हूँ, ये स्वप्न की बात, वहाँ शेर मिल गया, उसने मुझे पंजा मारा, खूब महलेगा, मैं बेहोश हो गया, यह सब उस समय सत्य ही प्रतीत होता है
सपने में,
सपने में, स्वप्न में यह अनुभूति नहीं होती कि मैं यह जो सब कुछ देख रहा हूँ झूठ है, वास्तविकता इसमें कुछ नहीं, किंतु इसके विपरीत ही प्रतीति होती, प्रतीति होती है, अरे मैं तो बेहोश हो गया अभी, हाय हाय अभी कौन मुझे बचाए, मैं तो मर जाऊंगा, ऐसा वहां लग रहा है। आंख खुलने पर मालूम होता है कि मैंने जो देख लिया यह सब असत्य है, यानी हाश हो जाता है ना। अच्छा, हम जहाँ जहाँ जाते हैं शिविरों में, मैं पूछती हूँ हमेशा, कल सपने में मुझे कैंसर हो गया, तभी मैं यहाँ नहीं हूँ, जैसे भोपाल जाते देवलाली जाते कहीं पर भी जाते तो पूछते हैं यहाँ कौन सा अस्पताल है जहाँ मुझे भर्ती होना चाहिए, आपको मालूम है बम्बे का कोई, हाँ आपको पूछ रहे हैं, हम वहाँ पूछते हैं, अभी आपको पूछे कौन से हॉस्पिटल में, टाटा टाटा, वहाँ पर ऐसे कोई कहते वो जयराम हॉस्पिटल है, कोई मैंने क्या कहा, मुझे कल रात को सपना आया, सपने में मुझे कैंसर हुआ
जनरल नॉलेज बता दे
क्योंकि ऐसे मिलते है कोई उत्तर यही तो सपने का इलाज क्या है, जाग जाओ,
इसी
ख्याल में आई ना बात, यही कह रहे यहाँ क्या, यह कौन सा सपना है, देह को मैंने मैं मान लिया और उसकी जो जो अवस्था वो मेरी होती, ये माना है, ये तो मोह रूपी चल रहा है ना सपना। तो आंख खुलने पर मालूम होता है, इसी प्रकार अभी वो ये तो दृष्टांत हुआ, इसी प्रकार मोह में पड़ा हुआ प्राणी भी, मोह ने मिथ्यात्व यानी भ्रमणा चल रही ना उसकी, इन सब बातों को सत्य जान रहा है कि यह मैं गरीब हूँ, यह मेरा घर है, यह मेरा पुत्र है आदि, यह सब तो एक प्रकार का स्वप्न ही है। रात को जो हम देखते हैं, चार पांच घंटे की नींद में जो होता है, यह कुछ उससे लंबी निद्रा है, यानी ये जो मोह निद्रा है वो तो 4-5 घंटे की निद्रा है, और ये मोह निद्रा तो बहुत लंबी चल रही है अनादि से।
कितनी लंबी है अनादि से आप?
अनादि से अब तक चल रही। तो कहते किंतु मेरा स्वभाव तो चैतन्य स्वरूप है, इसके अतिरिक्त सब झूठ है, बकवास है। इस प्रकार से विचार करना चाहिए, यानी जब चैतन्य स्वरूप को जान लेते हैं और इससे भिन्नता अपनी पहचान लेते हैं, तो अब तक जो हमने माना था वो तो भ्रम था, वो तो मोह निद्रा थी, ये पता चल जाता है। जैसे एक शहर में एक पगड़ी रंगने वाला रहता था, वह आसमानी रंग की पगड़ी रंगना बहुत अच्छी प्रकार जानता था। उसके पास कोई पीला रंग दिलवाने के लिए अपनी ओढ़नी लाया, कोई नीला रंग दिलवाने के लिए लाया, कोई लाल, कोई हरा आदि। उन सबसे वह रंगरेज बोला कि भैया चाहे किसी भी रंग की रंगवा लो, किंतु सबसे बढ़िया रंग तो आसमानी खिलता है। इसी प्रकार यह करो वह करो कुछ भी करो, आत्मीय आनंद पाने के लिए तो निज सहज स्वरूप की दृष्टि करनी होगी। आनंद तो निज दृष्टि से ही मिलता है। उन सब बातों को छोड़कर एक ही काम करो जो आत्मोद्धार का मार्ग है। एक ही उत्तम बात है, वह है स्वानुभूति। इसके अलावा कुछ भी तो हित नहीं है। धर्म के लिए मात्र चैतन्य स्वभाव की अनुभूति अतिरिक्त क्या काम है? कुछ भी तो नहीं। क्या कहते हैं? क्योंकि जीवों को धर्म क्या है वही मालूम नहीं है। धर्म के लिए क्या क्या करना चाहता है? कहते मैं रोज मंदिर जाता हूँ, भगवान की पूजा करता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, और तब जाके मैं दुकान पे जाता हूँ या घर में घर के काम में जुट जाता हूँ, तो अच्छा करता है कि नहीं? यहाँ क्या लिखा? धर्म के लिए मात्र चैतन्य स्वभाव की अनुभूति के अतिरिक्त, तो सब छोड़ दे, यानी वो तो छोड़ने की पड़ी है उसको। क्या करना चाहिए वो तो बात नहीं कह, पंजो तो क्या छोड़ दे, अरे बाकी की चीज तो कुछ कर ही नहीं सकता। तब भी तुम्हें जानना ही चल रहा था, परंतु अभी हम ये बातें क्यों करते हैं? तो स्वाध्याय से, आगम के ज्ञान से हमें सच क्या है उसके बारे में हम सुनते हैं। पहले सुनते तो हम चौंक जाते हैं, अरे हमने आज तक कुछ अन्य माना था, ये बात कुछ अलग है। हम जिसे धर्म मानते थे वो बात ये नहीं है। बचपन से जो कुछ हमने माना सुना जो कुछ किया, मगर ये कुछ बात अलग लगती है, और अंदर से ऐसे बात आती कि नहीं नहीं ये कुछ जानने लायक चीज है। तो ये तो हमें उस संबंधी ज्ञान हुआ। तो यहाँ जो विधि बताई है, जो कुछ प्रोसेस बताया, जो कुछ करने के लिए बताया, वैसा हम अपने सन्मुख होकर अपने को जानेंगे तब अनुभूति होगी। करने लायक तो यही है और यही धर्म है, और कुछ धर्म नहीं है। तो धर्म के लिए मात्र चैतन्य स्वभाव की अनुभूति के अतिरिक्त यानी उसको छोड़कर क्या काम है? तो कहे कुछ भी नहीं। ये तो फिर दान देना है, यात्रा करना है, ये सब होते रहेंगे, वो धर्म नहीं है, वो शुभ भाव है। करना के नहीं करना का वो सवाल नहीं है। हम तो करूं के नहीं करूं, यानी ये सारे पद अभी तक तो कर्ता बुद्धि है, अब यहाँ वो राग भाव भी मुझे करना चाहिए कि नहीं? अरे जो यथा योग्य आने वाला है वो तुझे उससे भिन्न है, ये इतना जानना है। हम तो ये छोड़ू और ये करूं इसी में लगे रहे, परंतु क्या करना है तो तत्व निर्णय पूर्वक अपने में स्थिर होना है, वो उसको करने जैसा नहीं लगता। यही सर्वदा सोचो मैं अपने में अपने लिए। देखो ये बात आई ना, क्या वाक्य था वो गीता में? श्याम स्वस्मय स्वे सुखी स्वयं, है ना? कुछ अलग था
साइड में लिखा है,
श्याम स्वस्मय स्वे सुखी, यही तो मैंने बोला। हाँ, कि मैं अपने में अपने लिए अपने को अपने आप अपने द्वारा ही सुखी हो सकता हूँ, इन्हें हो ऐसा वहां लिखा है श्याम। कर भी सकता हूँ तो मात्र अपनी ही परिणति। क्या कहा? क्योंकि वो अपनी परिणति हो रही ना उसकी, वो ही करा है उसका वर्क, वो उसको ही करता है, उसके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं कर सकता। ये सामायिक करना, दर्शन करना आदि के भी उपयोग अपनी आत्मा की ओर अपने को करने के लिए ही है। खोटे कार्य में न लगकर स्व की अनुभूति की ओर झुके, अतः सामायिक आदि किया जाता है। और केवल वो पाठ बोलना वो सामायिक नहीं है, अपनी अनुभूति के लिए प्रयत्नशील रहे तो वो सामान्य सामायिक कहलाए। समभाव की प्राप्ति हुई, सम प्लस आय, उसकी प्राप्ति हो जावे समभाव की तो वो सामायिक कहलाएगी। ये तो सामायिक व्रत होता है, एक सामायिक तप होता है, इसमें क्या डिफरेंस है? सामायिक व्रत क्या है, सामायिक तप क्या है? हाँ, प्रतिज्ञा पूर्वक जो है ना, पांचों गुणस्थान में हम देखते हैं सामायिक प्रतिमा ले ली उसने, अंगीकार की, यानी वो तो एकांत में वो बिल्कुल नियम पूर्वक बैठ कर, फिर उसमें तो उपयोग लगे कि नहीं लगे तो कुछ पाठ बोलेगा, कुछ करेगा, वो तो दिन प्रतिदिन उसके वो नियम पूर्वक करेगा। तप यानी जो मुनियों के होता है, अंतरंग में स्थिरता, वही सामायिक तप है और वही करने लायक है। ये भी जो शुभ भाव यानी जो बैठा है एकांत में, वो भी उसी के लिए, उसके लिए प्रयत्न है। वो अनुभूति नहीं है, वो बैठा है और कुछ बोल रहा है, पर ये तो उसके किसी ने तो उसको एक क्रिया बना के रखी है। क्या क्रिया? सब अंधेरा करेंगे, बैठेंगे हम, कुछ पुस्तक पढ़ेंगे या जो कुछ करेंगे, पाठ बोलेंगे, हमारी हो गई समय। परंतु उसमें तत्व निर्णय जो हुआ है, तत्वों के जो विचार चलेंगे मन में, चिंतन चले, वो चिंतन भी अभी अनुभूति नहीं है, परंतु पूर्व प्रक्रिया हम कह सकते हैं। यहाँ वही बात बताते हैं, खोटे कार्य में न लगकर, यानी अन्य अशुभ कार्यों में प्रवर्तते थे वहां से हटकर स्व की अनुभूति के लिए, उसके ओर झुकने के लिए सामायिक आदि किया जाता है। मैं तो समस्त द्रव्यों से भिन्न हूं तथा समस्त द्रव्य मुझसे भिन्न है, क्योंकि मैं एक हूं। राग द्वेष ही संसार में रुलाने वाले हैं। मोह की भित्ती से टकरा कर यह उपयोग दो रूप में बढ़ जाता है, एक राग की ओर, एक द्वेष की ओर। यहाँ वो ज्ञान उपयोग नहीं लिया है, जो हम चारित्र गुण की अपेक्षा जो आप उपयोग के भेद करते हैं ना, शुभ अशुभ और शुद्ध वगैरह, उसकी बात है। जैसे नदी का बहता हुआ पूर पुल के बीच लगे खंभे से टक्कर पाकर दो धारा में बहने लगता है। क्या कहते हैं, हमने देखा है नदी बहती है और पुल के खंभे से टकराती है, तो ऐसे पानी का प्रवाह ऐसे इधर उधर चला जाता है, डिवाइड हो जाता है। उसी प्रकार मोह की टक्कर पाकर यह उपयोग राग द्वेष इन दो रूप में प्रवाहित हो रहा है। यदि पर पदार्थ एक ही हो तब कोई गड़बड़ी नहीं होगी, किंतु अनेक पर पदार्थों के मिलने पर राग द्वेष के भाव पैदा होते हैं। जहां दो होते हैं वहां द्विविधा होती है। एक पिता के यदि एक लड़का है तब तो कोई बात नहीं होगी, किंतु दो या अधिक होने से राग द्वेष की भावनाएं होती है। एक से द्वेष अवश्य ही होगा। मैं अज्ञानवश अपने स्वरूप को भूलकर राग द्वेष रूप दो धाराओं में बह रहा हूं, अतः राग द्वेष को छोड़कर मैं स्वयं में सुखी हूँ। उसको छोड़ना का अर्थ है उसका ही हम लक्ष्य कर रहे हैं और उस रूप अपने को मान रहे हैं, यानी ज्ञान जुदा है, राग द्वेष जुदा है। मैं तो चैतन्य हूँ। अभी तक क्या है, ये चैतन्य राग द्वेष के साथ मिला जुला लगता है, परंतु हम उससे भिन्न है तो उससे विमुख होना ही उसको छोड़ना है। क्योंकि ग्रहण करने का अर्थ क्या है, जानना, तो छोड़ने का अर्थ क्या, छोड़ देना, जानना छोड़ो ना उसको, उससे विमुख हो जाना, वो मेरे से जुदा है ऐसे जानना, तो बाद में वो छूट जाएंगे तो उसको छोड़ा कहेंगे। मैं पर पदार्थ का उपादान से भी करता नहीं हूं तो क्या निमित्त से हूं? तो कहते नहीं, क्योंकि लोग मानते ना मैं निमित्त तो हूं ना, मैं निमित्त तो हूं ना, ये बता रहे। निमित्त से भी करता नहीं हूं। योग उपयोग ही निमित्त रूप से करता है। ये योग और उपयोग भी क्षणिक ही है, किंतु आत्मा क्षणिक नहीं। क्योंकि योग उपयोग का भी कदाचित करता बताया था पहले उन्होंने, योग उपयोग की जो तरंग उठती है वह करता है, आत्मा तो निमित्त से भी करता नहीं है। योग उपयोग का करता आत्मा है, अर्थात वह आत्मा की परिणति है। इसलिए बताया ना वो क्षणिक तरंग है, उसका करता वही स्वयं है। गुरुदेव ने अनेक बार बताया ना कि पर्याय पर्याय का करता है आत्मा, उसका कुछ नहीं है, निमित्त भी वो नहीं है। योग उपयोग उसमें निमित्त हो तो हो, या आत्मा उसका योग उपयोग का तो करता है तो कहते हो तो कदाचित, यानी किसी अपेक्षा का हो तो कहो। जो ध्रुव है वह दूसरे की परिणति का भी निमित्त करता नहीं होता, करता अध्रुव ही होगा।
पर्याय
हाँ, यानी पर्याय वो भी निमित्त रूप से है, वो भी उपादान रूप से तो कोई हो ही नहीं सकता। जो देखो देखो जो ध्रुव वस्तु है ना, वस्तु है, उसमें क्या है, गुण है, पर्याय है। गुण कब से है? अनादि से और अनंत काल तक रहते हैं, कायम रहने वाले, उसको ध्रुव कहते हैं। और पर्याय कैसी है? एक एक समय में नई नई पर्याय होती है, वो क्षणिक है, वो अध्रुव है। तो कहते हैं कि वस्तु, देखो द्रव्य शब्द दोनों के लिए आते हैं, इसलिए जो बहुत जगह जो कंफ्यूजन चलती है ना, पूरे द्रव्य को हम वस्तु कहेंगे और फिर उसके दो भेद किए, द्रव्य और पर्याय। जो नित्य ध्रुव अंश है उसको द्रव्य कहने की पद्धति है, और पूरे वस्तु को भी द्रव्य कहने की पद्धति है। जब कहेंगे द्रव्य वो पर्याय का भी करता नहीं है, तो वो नित्य अंश वाली बात है, ध्रुव अंश वाली बात है, और पर्याय स्वयं अपने षटकारक से होती है, ऐसा कथन आता है। पूरी वस्तु को भी द्रव्य जब कहेंगे तो द्रव्य तो गुण पर्याय, द्रव्य मोद गुण और पर्यायों का समूह, ऐसा भी कहेंगे। ऐसे अलग अलग कथन आते तो उसको तो जो समझता नहीं है उसका सर्वथा निषेध कर देता है, और जो मालूम नहीं उनके कन्फ्यूजन भी और बढ़ता है। यहाँ ध्रुव अंश जो कायम रहने वाला है और एक पलटने वाला अंश, यही कह रहे हैं। जो ध्रुव है वो दूसरे की परिणति का भी निमित्त करता नहीं होता, यानी वो निमित्त करता भी तो होता ही नहीं, ना उपादान तो है ही नहीं, वो निमित्त भी नहीं है। यहाँ तो हमने ये भी देखा था अपने पर्याय का तो करता है, तो उसको उसका भी नहीं करता कहेंगे, क्योंकि पर्याय स्वयं परिणमित होती है अपने षटकारक से, ये हमने पहले देखी थी बात। इसलिए कहते हैं कर्ता अध्रुव ही होगा, ये करता है वो निमित्त करता, वो भी हमने देखा पर पदार्थ का निमित्तम अपने को मानने वाला है, वो निमित्त नाम का कोई कर्ता होता ही नहीं, वो निमित्त है बस, अपने में परिणमन हो रहा है। प्रत्येक पदार्थ अन्य प्रत्येक पदार्थ से भिन्न है, मैं भी बाह्य पर पदार्थों से दूर हूं। दूर यानी हम कहते वो वहां पड़ा है कुर्सी और मैं यहां बैठा तो वो दूर है, ऐसा लगता है। तो ये जो जहाँ आत्म प्रदेश है वहीं पर अनंतानंत पुद्गल परमाणु पड़े हैं, जो हमारे कुछ नहीं लगते वे भी है, और कारमान कर्म शरीर है, तेजस शरीर है, औदारिक शरीर के परमाणु है, उसी क्षेत्र में, आकाश के उसी क्षेत्र में, फिर भी मैं उनसे दूर हूँ। क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपने अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में स्थित है, आकाश के उसी प्रदेश में क्यों ना, जिसको एक क्षेत्रावगाह संबंध कहते हैं, उस एक ही क्षेत्र में क्यों न रहते हो अनेक द्रव्य। प्रत्येक द्रव्य जुदा जुदा है, एक दूसरे से दूर है, वहां तो कहते उसको स्पर्श भी नहीं किया, ये इसकी कथन पद्धति होती है। बाह्य पदार्थों की दृष्टि करके व्यर्थ के विकल्प परिणमन होते हैं, क्या होता है, बाह्य पदार्थों में ही वो रचा पचा रहता है और उस संबंधी विकल्प होते रहते हैं, तो इसके विकल्प के कारण तो कार्य होते हैं कि नहीं है। सुबह उठने के पहले नींद में ही हमने रोटी बनाना चालू कर देते हैं, और फिर जागने में अरे इतने बार इतना कष्ट किया तो कुछ बनी नहीं रोटी, हम तो विकल्पों में ही बना रहे थे, कितनी बनी रोटी है कि नहीं बनी, और बाद में जब जग गए तो बनाई कि नहीं। उस संबंधी विकल्प होते रहते, यही कह रहे व्यर्थ के विकल्प परिणमन। व्यर्थ क्यों कहा, हमने अभी अभी देखा प्रत्येक परमाणु भी अपने क्षेत्र में परिणमन कर रहा है, अपने से कर रहा है, अपने उपादान से हो रहा है। तो दुनिया में अनंतानंत द्रव्य है, वो सारे अपना अपना परिणमन कर रहे है, और यहाँ बैठा बैठा विकल्प कर रहा है, मुझे ये करना है, वो करना है, मैं ऐसा करूँ, मैं ऐसा करूँ, मैंने ऐसा किया, और फिर उसे राग द्वेष की श्रृंखला बना रही। इसके कहने से, इसके विकल्प करने से इस विश्व में कुछ परिणमन नहीं हो रहा है, फिर भी वो किए बिना नहीं रहता है, उसी में माथा मारता है ना, क्या कहते हैं?
एक जो रोटी बनती है तो रोटी में जो अनेक परमाणु है, तो वो रोटी का कुछ भाग कच्चा भी रहता है, कभी कभी वो एकदम काला भी जल के हो जाता है। हम तो नहीं चाहते हैं कि हमारे से रोटी एकदम बिल्कुल सही ठीक ठाक हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो हम मेरे से हुआ तुमने ध्यान नहीं दिया, ऐसा ये तो कहने के लिए है, लेकिन उसका जैसा परिणाम होना तो वैसा ही हुआ है। वो
हमने आटे से रोटी बनाई तो कुछ आटा तो नीचे गिर गया, उसकी रोटी क्यों नहीं बनी? जब वो हाँ ये तो आटा गूंथा तो कुछ तो थाली में चिपक गया, उसकी रोटी नहीं बनी। कुछ तो हाथ में लगकर धोने में चला गया, उसकी रोटी नहीं बनी। कुछ तो तवे में डाले तो उसमें जल के वो उसकी राख हुई, उसकी तो रोटी नहीं बनी। जो बनी अपने से, जो परमाणु रोटी रूप परिणमित हुए, वो तो मैंने बनाए। देखो द्रव्य की स्वतंत्रता का, क्योंकि उसका उसका परिणमन अपने में हो रहा है। जो जलने रूप होना था उसके, नहीं नहीं वो गैस पहले बहुत बड़ा था, तवा बहुत गर्म इसलिए वो जल गया, नहीं तो उसके लिए हम निमित्त ढूंढते हैं, है ना। वैसा ही उसका अपने से परिणमन होने वाला था। यहाँ क्या कहते, देखो इन सब विकल्पों को छोड़कर मैं अपने में, अपने आप, अपने लिए, अपने द्वारा सुखी हूँ। ये तो हम तो सुखी बनने के लिए विकल्प करते रहते हैं, तो कहते सच्चा मार्ग तो ये है, तो इन विकल्पों को छोड़ो, अभी उसके पीछे मत लगो, तो अपने में अपने को ही जानते रहो तो अपने आप सुखी हो जाएंगे। सच्चा अपना लक्ष्य करो तो विकल्प तो नेचुरली बंद हो जाएंगे। यहाँ तो ये विकल्प छोड़ने की भी कोशिश ही करता है, वो तो लक्ष्य विकल्प का है, क्योंकि उसको छोड़ना है ना, छोड़ना है ना, उसका कर्ता बन के बैठता है। या तो विकल्प करूँ करूँ मैं, ये विकल्प छोड़ू छोड़ू मैं अटका है। तो कहते मैं अपने में, अपने आप, अपने लिए, अपने द्वारा सुखी होऊं। श्याम स्वस्मय स्वे सुखी स्वयं। राग द्वेष के कारण उत्पन्न संताप की स्थिति में भी, क्या कहे, जब राग द्वेष हो रहा है उस काल की बात भी ले रहे, उस संताप की स्थिति है ना, उस काल में भी यदि स्व की अनुभूति कर लो संताप दूर हो जाएगा। स्व की अनुभूति ने अपने को ज्ञान में अनुभवना है। अभी उस काल में तो ये समय दृष्टि के संभव है, क्योंकि यहाँ तो राग द्वेष जिसको तीव्र हो रहे है, तो जिसको अपना अनुभव है तो उस काल में भी उसके ज्ञान की और उसकी भिन्नता ख्याल में आती है। अपने आप की अनुभूति ही आनंददायक है। अपने आप का दर्शन हो, आत्मा में ही रति हो, रति यानी उसी में लीनता हो जाए, उसकी प्रीति पूर्वक उसमें लीनता हो, आत्मा में ही रुचि हो, इसके अतिरिक्त कोई सहायक नहीं है। यानी अपने कोई दूसरे ने, वो तो कोई कर देता नहीं है, कोई आपको मैंने कुछ ज्ञान बांट दिया, समय ज्ञान दिया कि समय दर्शन दिया, ऐसी बात हो नहीं सकती। कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता। ये उपदेश देने वाले आचार्य भी हो तो वो अपने में ही, वो उनका तो योग उपयोग लगा है करो, या तो शुभ राग है उपदेश देने संबंधी, भाषा का जो कार्य हो रहा है भाषा वर्गना का उसमें हो रहा है, सुनते बहुत है, कोई परिणमता है वो अपने से परिणमता है। इन्होंने हमको समझा इसलिए हम, ये तो कहने की बात है। तो कहते इसे अतिरिक्त कोई सहायक नहीं है, यानी अपनी आत्मा की तीव्र रुचि ही इसको रास्ता बना देती, फिर उसको समझाने वाले भी मिले गए, उसको समझ में भी आएगा, सब कुछ बात हो जाएगी। यह सब कषाय वालों का मेल है, अतः इन सबसे कोई फायदा नहीं होगा। अभी तो ऐसा है ना, कहीं जाते हैं ना, कहीं तो जाते ही नहीं, शादी ब्याह में तो जाते ही नहीं है, कहीं प्रसंग होता है, कोई लोग इकट्ठे होते हैं तो कषायों की होली लगती है, वहां जाते हैं, तो इसलिए कहीं जाना आना भी अच्छा नहीं लगता। तो यह सब कषाय वालों का मेल है, अतः इन सबसे कोई फायदा नहीं होगा। जिससे जिसकी कषाय मेल खा गई उससे मित्रता, मेल न खाने पर शत्रुता होती है। क्या कहते हैं, जहां जहां अपने कषाय के साथ, जैसे अपने को विषय कषायों की रुचि है तो वैसी समान रुचि वालों के साथ अपनी मैत्री दोस्ती हो जाती है, और जिनको नहीं मेल खाता उनसे शत्रुता हो जाती है, ये कह रहे। देखो फिर से पढ़ेंगे, जिससे जिसकी कषाय मेल खा गई उससे मित्रता, मेल यानी वो तो मिल गई बराबर, मैच हो गई,
मैच
हो गई। मेल न खाने पर शत्रुता होती है, कि हमारा कुछ कहना अलग है उनका कुछ है, तो चालू हो जाता।
हमारे बाजू वाले जो है वो बोलते हैं कैसा बिल्डिंग है आपका, यहाँ कोई किसी से मिलता नहीं कुछ नहीं, सब अपने अपने घर में बैठे, कम से कम आप तो हमारे घर में आओ। तो घर में गए तो पानी तो पियो, यार पानी भी अनशन है पिए कैसा। उनको समझावे क्या, अरे हम एक ही टाकी से पानी लेते, आप क्यों नहीं पीते। नहीं अभी इच्छा नहीं है, क्या बताएं उनको, बोलो चाय पीते नहीं, कॉफ़ी पीते नहीं, कुछ नहीं, तो फिर पानी तो पियो, तो वो भी अनजाना कैसा पी। मुझे मेरी बहन की याद आती है, दूर की बहन थी मेरी, हम शिखर जी यात्रा गए थे 1951 या 50 में, मुझे याद नहीं। वो बिल्कुल सवले से खाती पीते और बाय ट्रेन जाते थे, तो ट्रेन में जावे तो क्या करे, दौड़े दौड़े दौड़े, जब भी ट्रेन रुक जावे कोई ऐसे जंक्शन पर तो वहाँ से पानी लावे खुद, कोई छुए नहीं ऐसा करके, और वहीं पे 3 पत्थर डाल के खाना बनाए वहाँ खाए। तो हम बोलते अरे यार तू तो कौन से ज़माने की है, ज़माना कितना आगे गया है, तू तो 1857 साल की है। बोलते हाँ हमें तो कभी बम्बई में आए
स्टेशन पर उतर तो कर खाना पका के खाते,
हम उसको ज़बरदस्ती होटल में ले गए। होटल में मैं कुछ नहीं खाऊंगा, अरे पानी तो पियो, अच्छा आप कहते तो पानी पीते हो। तो उसने क्या किया, गिलास लिया उसके ऊपर अपना पल्लू डाला, साड़ी पहनती है ना, और उससे फिर पानी पिया। हमको तो ऐसा लगा कि क्या भाई है ये, और आज लगता है कि कितनी उसकी मतलब दृढ़ता थी, और हम मूर्ख थे, उसको नाम लगा देते कि तू ऐसी है वैसी वैसी। आज देखो कौन ऐसा करता है। और तो और बहुत सारी बातें हैं, ऐसे खिड़की पे हाथ रख के खड़ी थी, कितने में ऊपर से खिड़की गिर गई तो उसकी हड्डी टूट गई, ऐसी जाड़ा उंगली वगैरह हो गया, ऐसे एक हाथ से रोटी बना के खाते जब तक कोई जंक्शन नहीं आता नीचे नहीं उतरे। अभी तो आंखों में पानी आता है। सतीश ना पेची आई यानी हम लगता है कि हम बहुत धर्म करते हैं ये, लेकिन ये जो व्यवहारिक धर्म है वो भी इतना उच्च प्रति का। उस समय हमें तो कुछ समझता नहीं था, और अभी समझता है तो वो फॉलो नहीं करते।
देखो हमें क्या पढ़ा भी, जिससे जिसकी कषाय मेल खा गई उससे मित्रता, मेल न खाने पर शत्रुता होती है, अतः सभी स्वार्थी है। वैसे ये सब स्वानुभूति के समक्ष व्यर्थ है, यानी किसी से मित्रता होवे या शत्रुता हो तो स्वानुभूति के सामने तो बाकी कुछ चीज मायने नहीं रखती। सर्व पदार्थों को जिन्हें भी जानो, जितना उनका सत्ता सिद्ध स्वरूप है उसी रूप में जानो। क्या कहते हैं, सभी पदार्थों को जानना है तो उनके अपने द्रव्य रूप से उनको जानो, यहाँ लिखा ना सत्ता सिद्ध स्वरूप है। तो हमने इसको जाना, कैसे जाना, तो ये पुद्गल है, ये उसकी सत्ता है, तो उसमें वो स्पर्श रस गंध वर्ण उसका वो अपना परिणमन है। हमने क्या किया, ये अच्छा है ये बुरा है, ये अच्छा कलर नहीं था ये अच्छा था, उसी में राग द्वेष करने लगे, उसी में विकल्प करने लगे, कोई चीज़ देखी अरे अपने पास ऐसी होनी चाहिए, क्या हुआ विकल्प करने लगे। विकल्प से तो कुछ नहीं हो रहा है परंतु उसके राग द्वेष हो रहे हैं। यही कह रहे, देखो जितने भी पदार्थ है, जिस पदार्थों को जिन्हें भी जानो, जितना उनका सत्ता सिद्ध स्वरूप है उसी रूप में जानो। आत्मसुख यथार्थ ज्ञान में मिलेगा, अन्यत्र नहीं मिलेगा। क्या कहते हैं, जब तक ज्ञान यथार्थ नहीं है तब तक आत्मा का अनुभव भी नहीं होगा और आत्मा का सुख भी नहीं होगा। इसलिए कहते हैं यथार्थ ज्ञान में आत्मसुख मिलेगा। अब 4 नंबर का यहाँ उनका श्लोक पढ़ना है, इसको उन्होंने सहजानंद गीता नाम दिया है, ये उनकी अपनी रचना है और स्वयं उस पर प्रवचन दे रहे हैं। न करोमि न चाकार्षम न करिष्यामि किंचन विकल्पे न मुधा त्रस्तस्याम स्वस्मै स्वे सुखी। कुछ गलत हो गया,
राग बराबर नहीं।
न करोमि न चाकार्षम न करिष्यामि किंचन विकल्पे न मुधा त्रस्तस्याम स्वस्मै स्वे सुखी स्वयं। मैं न कुछ करता हूँ और न मैंने कुछ किया। न करोमि न च आकर्षम, तथा न मैं कुछ करूँगा, न करिष्यामि किंचन ने कुछ भी, परंतु व्यर्थ विकल्प से दुखी हुआ हूँ। विकल्पेन मुधा त्रस्तः, अब यानी पहली अपनी पोजीशन बता रहे कि मैंने क्या किया अब तक। तो कहने मैं ना कुछ करता हूँ, पर मैं तो हमने कुछ ना मैं करता हूँ ना मुझ कुछ किया है ना मैं कुछ कर सकूँगा, परंतु क्या किया अभी तक, व्यर्थ विकल्प से दुखी हुआ हूँ। अब निर्विकल्प होता हुआ मैं अपने में अपने लिए स्वयं सुखी होऊँ। ये सुखी होने का बस रास्ता बता रहे हैं, क्या करना है, ये विकल्पों की झंझट छोड़कर अपने में मस्त रहना है, अपने सुखी होना है। किसी भी पदार्थ को न मैं कुछ कर सकता हूँ, न आज तक कुछ कर सका हूँ, न आगे कर ही सकूँगा। सब पदार्थ स्वयं सत्ता वाले हैं। क्या कहते हैं, हर एक पदार्थ की अपनी अपनी सत्ता है और उस सत्ता में ही उनका सब कुछ छट करता है। वो सभी अपने में परिपूर्ण है, स्वयं पूर्ण है। वस्तु सत्तो है, किंतु अन्य सभी रूप से सत नहीं हो जाती। क्या कहते हैं, सब पदार्थ स्वयं सत्ता वाले हैं, वस्तु सत्तो है, किंतु अन्य सभी रूप से सत नहीं हो जाती, अन्यथा कुछ भी न रहेगा। यानी वो पर रूप से नहीं हो जाती, अन्य रूप से कुछ नहीं होती, वो अपने से हमेशा ही रहती है, अन्य रूप से नहीं होती। अतः प्रत्येक वस्तु अपने चतुष्टय से सत है, पर के चतुष्टय से नहीं। चतुष्टय समझते हैं कौन से हैं? हाँ हाँ, याद करो। स्व चतुष्टय किसको कहेंगे? वो अनंत चतुष्टय नहीं, वो नहीं। हाँ बहुत अच्छा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। प्रत्येक वस्तु को अपना स्वयं का द्रव्य है, वो अपना क्षेत्र है, उसका फैलाव जो है कितना बड़ा छोटा है, वो अपना काल है, उसका परिणमन जो कुछ है अनादि अनंत है, और उसके भाव उसके अनंत गुण है, उसका जो स्वभाव है। तो प्रत्येक द्रव्य अपने चतुष्टय में रहता है, तो अपने से है पर से नहीं है। मैं अपने स्व चतुष्टय से हूँ, शरीर के अनंत परमाणु का अनंत अपना अपना चतुष्टय भिन्न भिन्न है। शरीर का सबका मिलकर एक चतुष्टय नहीं है, हमने देखा था स्कंध में भी एक एक परमाणु की सत्ता जुदी जुदी। तो प्रत्येक वस्तु अपने चतुष्टय से सत है, पर के चतुष्टय से नहीं है। यानी इसको अस्थि नास्ति भी कहते हैं, अपने चतुष्टय से अस्थि है, पर से नास्ति, उसी वस्तु असत है। जैसे मैं अपने से हूँ और आप कहाँ कुर्सी पर बैठे हो, तो कुर्सी रूप से आप नहीं हो। क्या आप हो क्या नहीं हो? मैं हूँ भी और नहीं भी हूँ, अरे एक कुछ नक्की करो ना, मैं अपने से हूँ, मैं पर से नहीं हूँ। तो मैं अपने से हूँ तो मैं इस विश्व के अनंत पर पदार्थ रूप से नहीं हूँ। तो जिस रूप से मैं नहीं हूँ उनका कार्य मैं करूँ, ये बात कहाँ से आई? तो कहते प्रत्येक वस्तु अपने चतुष्टय से सत है, पर के चतुष्टय से नहीं। यह वस्तु के वस्तुत्व गुण का प्रताप है। वस्तु में परिणित होना या परिणत होना स्वभाव से सिद्ध है। यानी प्रत्येक द्रव्य अपने अपने अपना अपना परिणमन स्वयं करती है, इसको अर्थ क्रियाकारित्व कहो, या उसका प्रयोजन भूत उसका कार्य अपना अपना करते हैं। तो ये वस्तुत्व गुण है, इसीलिए उसको वस्तु कहने में आता है। यही कहा, यह वस्तु के वस्तुत्व गुण का प्रताप है। यानी प्रत्येक वस्तु अपने में परिणमित होती रहती है, उसका स्वभाव से सिद्ध है। वे अपने आप परिणमन करते हैं। क्या कहा? वस्तु को परिणमन करने के लिए किसी अन्य चीज की गरज हो, ये बात नहीं है। परिणमन करना उसका स्वभाव ही है। वस्तु स्वयं परिणमनशील है और वो प्रत्येक समय में ये परिणमन चलता है। ये द्रव्य का अपना निजी स्वभाव है। कोई दूसरा आवे और फिर हमारे यहाँ परिणमन हो जावे, ये बात होती नहीं है। आप कहेंगे परिणमन करना तो स्वभाव है, पर क्या परिणमन करना वो तो निमित्त डिसाइड करता है ना। तो कहते नहीं, किस पर्याय रूप से परिणमित होना ये भी द्रव्य के अंदर है, क्योंकि सारा ये सेल्फ सफिशिएंट मामला है। अंदर ही अंदर बाह्य किसी चीज से कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ कार्य होता है, अपने से होता है, अपने में होता है, तब किसी अन्य चीज पर आरोप हो सकता है कि उसका इसके कारण हुआ, तो उसको हम निमित्त कह देते हैं। यानी इतनी स्वतंत्र व्यवस्था है, यही कह रहे। देखो, वस्तु में परिणत होना स्वभाव से सिद्ध है, वे अपने आप परिणमन करते हैं। वस्तु अपने चतुष्टय में द्रव्यत्व गुण द्वारा परिणमनशील है। अभी शील है नहीं, क्या है? यह निरंतर परिणमन हो रहा है। वस्तुत्व गुण के कारण द्रव्य अपना अपना कार्य नहीं, अपने अपने पर्याय रूप से परिणमित होता है, और ये परिणमन जो है निरंतर चलता रहे द्रव्यत्व गुण का कार्य। नहीं तो कभी तो कार्य हो जाएगा, फिर द्रव्य आराम करेगा, ऐसा नहीं। वह निरंतर परिणमन करता है। लिखा है ना आगे, एक क्षण के लिए भी द्रव्य का परिणमन बंद नहीं होता, यह द्रव्यत्व गुण का प्रताप है। तो सिद्ध भगवान हो जाने पर परिणमन रुकेगा कि नहीं रुकेगा? अभी अनादि से परिणमन कर करके थक गया है, तो सिद्ध भगवान में तो वो थकान दूर हो जाएगी ना। परिणमन रुक जाएगा तो हम शांति से सो जाएंगे, क्या होगा? जो स्वभाव है वो कायम रहता है। तो हर समय परिणमना वहां पर भी चल रहा है, हर समय अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, ये सब सभी अनंत गुणों का परिणमन वहां चल रहा है, वीतरागी होने के बाद भी, क्योंकि वो परिणमन हो रहा है ना। वीतरागता क्या है? ये इटसेल्फ परिणमन है। कौन से चारित्र गुण में परिणमन है? वीतरागता। तो वीतरागता कायम चलेगी कि नहीं? पर्याय में सामर्थ्य तो अनादि से है, पर्याय में हुआ तब उसका अनुभव हो रहा है। यदि वो पर्याय मिट जाएगी तो अनंत सुख का अनुभव बंद हो जाएगा। पर्याय रूप पलटना ये तो द्रव्य का स्वभाव है, वो सिद्धों में भी चालू रहे। भले वितरागी है, सर्वज्ञ है, अभी सब कुछ जान लिया, अभी क्या जानने का रह गया, चलो अभी आराम करो, तो कहते ऐसा नहीं, ये हर समय चलेगा ना। हो गया समय, यही रुकेंगे। एक क्षण के लिए हो गया ना, परिणमन बंद नहीं होता, यह द्रव्य तो गुण का प्रताप हो गया। जावानी के ज्ञान से सूझे लो पालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देवी।